ओम शांति। आज एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पे चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, हिस्सा लेंगे आप सभी। छोटी क्लास है आज, दुखों के कारण और निवारण। संसार में दुख तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोचता रहा दिन से कि आज किस टॉपिक पे क्लास करें। एक माता का फोन आ गया रुपेश भाई के पास, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने पूछा क्यों दुखी हो, ये तो मुझे पता नहीं चलता। बच्चे एक 5 साल का, एक 4 साल का। पति बुरा व्यवहार करता है क्या कि नहीं? फिर तुम दुखी क्यों हो भाई? पता नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। फिर कहा मैं 1 मास में इन सभी दुखों से मुक्त होना चाहती हूं, क्या करूं? मैंने कहा बड़ा जल्दी, आप तो उतावली हैं दुखों से मुक्त होने के लिए, मार्ग तो है। तब से मैंने सोचा आज हम चिंतन करेंगे दुखों के कारण क्या हैं। आगे आ जाओ पीछे वाले, भले ही सोफे पे आ जाओ, सोफे पे आ जाओ अगले वाले पे। बोलो कौन बोलेंगे पहले, जरूर नहीं उनका आपको अनुभव हो, आप उत्तर देंगे वैसे ही। दुखों का कारण विद्याधर आ गया, तुम ही बता दो पहले। अच्छा, दुखों का कारण नेगेटिव चिंतन। लिखते जाओ, लिखते जाना। बाबा साकार में थे तो 67 में कई दिन तक एक लहर चलाई मुरली में, 108 दुखों की लिस्ट निकालो। हम सब खूब निकालते थे, वो छोटे थे तो उमंग ज्यादा रहती थी ऐसी बातों की, पर दुखों का ज्यादा पता भी नहीं था। 10-15 लिख के सोचने लगे और क्या दुख होते हैं भाई। तो दुखों के प्रकार भी बहुत हैं, कारण भी हैं। संसार में कौन से दुख बहुत बढ़ रहे हैं? मानसिक रोगों के कारण दुख। एक बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर ने हमें कहा, मैंने पूछा उनसे, वो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जो मनोरोग चिकित्सक है ना, मन के रोगों को ठीक करते हैं, उन सब के अध्यक्ष और ब्रह्मा कुमार। मैंने उनसे हंसी में पूछा आपके डिप्रेशन का क्या हाल है दुनिया में, तो कहने लगे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2020 तक ये बीमारी सबसे ऊपर आ जाएगी। मैंने कहा भाई मैं तो 2 साल से ये कहता आ रहा हूं कि आधी दुनिया सोएगी भी नहीं 2020 के बाद, और हम सबको उन्हें मदद करनी पड़ेगी। मानसिक रोग दुखों का सबसे बड़ा कारण। शारीरिक रोग भी कारण है, पर कभी कभी शारीरिक रोगों को मनुष्य सहन भी कर लेता है, वो शक्तिशाली होता है, पर मानसिक रोगों से मनुष्य बहुत निर्बल हो जाता है, तो बहुत भारी पड़ता है। और दुखों का कारण बोलो, सबको पता है, संबंधों में कड़वाहट। मैं बोल देता हूं, चिंतन करेंगे सभी। आज आज के जो अनुभव हैं लोगों से कांटेक्ट के, धन से ज्यादा प्यार, संपत्ति से ज्यादा प्यार, पति या पत्नी से नहीं, सीधी भाषा बोल रहा हूं, है या नहीं? एक के पति को जो हड्डियों का सर्जन है, कैंसर हो गया है, उन्होंने अब अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बनाया, पत्नी भी डॉक्टर है, पत्नी ध्यान नहीं दे रही है, क्या सोचती है, जाए ये सब ये माल मेरा। मैंने कहा देखो पत्नियों का भी हाल कलयुग के अंत में, जरा भी पति से वफादारी नहीं, प्यार में क्या हो गया, केवल स्वार्थ। नहीं तो भारत की नारी पति के पीछे चिता पर जल जाती थी, पता है ना माताओं को, बहुत ईमानदार, बहुत इसको निष्ठावान कहते हैं, पति के लिए कुर्बान। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी, पति की छोटी आयु लड़के की दोनों टांग एक्सीडेंट में कट गई, लड़की के बाप ने उसको कहा तुम छोड़ो इसे, कैसे जीवन चलाओगी, दूसरी शादी कर देते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी सेवा करनी है, मैंने इससे नाता जोड़ा है, ये मानता है ना। लेकिन आज दुखों का ये सबसे बड़ा कारण, और बोलो इच्छाओं की अति। अब तो चली बुद्धि, बोलो शारीरिक रोग, बोलते जाओ दुखों के कारण। हम दुखों के प्रकार नहीं गिनाएंगे, वो तो बहुत हैं दुनिया में। कारण पापों का बोझ, पापों की अति, बुद्धि का यथार्थ काम न करना या बुद्धि का दुरुपयोग करना, क्रोध, लोभ इच्छाएं हमें आ गया, मोह भी। क्रोध बहुत दुखी कर रहा है लोगों को, संबंधों में कड़वाहट, ईर्ष्या, देही का कर्षण, बोलो पीछे वाले सुने नहीं, केवल अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, जोर से बोलो, क्या बोल रहे भाई, स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस। अंग्रेजी भी हरियाणा वाले बोलते हैं स्ट्रेस, स्कूल, स्कूटर, ये नहीं। एक ने मुझे कहा भाई जी शक्तियों का स्टॉक पूरा खाली हो गया है। स्टॉक नहीं, स्टॉक, ये जो आधा से है ना, इससे पहले ई भी लगता है। तो स्ट्रेस ये भी बहुत बड़ा कारण बन गया है दुखों का, हमें निवारण करना है। आज मैं सोच रहा था एक बात पर, गहरी बात है, आप सभी उस पर ध्यान देंगे, दुख तेजी से आगे बढ़ेंगे। सुशील ने बताया पाप दुखों का सबसे बड़ा कारण है, और आजकल जिन लोगों को लगता है कि पापी लोग मौज मना रहे हैं, ये तो दिखता है ना, सबको दिखता है, पापियों का जमाना है, पापी ही वीआईपी बनते हैं, पापी ही मौज मनाते हैं, ईमानदार, सत्यवान, चरित्रवान, विद्यावान, ये सब बेचारे गरीब रह जाते हैं। सरस्वती को तो गरीब ही दिखाया गया ना, सरस्वती माने विद्या, विद्या की देवी, जिसके पास विद्या है वो तो गरीब ही रहता है, क्योंकि वो ईमानदार रहेगा, चरित्रवान रहेगा, ऐसे वैसे काम नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से सुन लेंगे, पाप जो भी मनुष्य ने किए हैं या कर रहा है वो उसके ब्रेन में तरंगों के रूप में छपता रहता है, प्रिंट होता है। माताओं ने समझ लिया सीधी भाषा, जो भी हम पाप करते हैं, पुण्य भी पाप भी, हमारे ब्रेन में तरंगों के रूप में छपता रहता है, प्रिंट होता रहता है। तो संसार में जैसे पाप की वृद्धि हो रही है, जैसे पाप की हवा चल रही है, बैड एनर्जी फैलती जा रही है, तो वो पाप के वाइब्रेशंस ब्रेन में छपी हुई इन तरंगों को जागृत कर देंगे, और इससे होंगे सबको बहुत कष्ट, मानसिक रोग, मानसिक पीड़ाएं, नींद नहीं आएगी, बहुत बुरा हाल होगा। और इसी कारण से भटकती हुई आत्माएं भी आकर्षित होके ऐसे मनुष्य के पास आ जाती हैं, अटैक कर देती हैं। आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, कई लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते, ये तो अपनी अपनी मान्यता है, हम लोग भी नहीं मानते थे कि भटकती हुई आत्माएं होती हैं क्या, इविल स्पिरिट्स भी होती हैं क्या, पर अब जब रोज के सुनने को मिलते हैं तो समझ में आता है ये आत्माएं भी अपना काम कर रही हैं। क्योंकि सुसाइड बहुत लोग कर रहे हैं, जिनका लोगों को पता चलता है जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, 1000 रोज संसार में, 1000 थोड़े नहीं होते, 1000 रोज सुसाइड करते हैं। देखो मास में कितने हो जाएंगे, 30,000, साल में 36,000, तो ये आत्माएं भटकती हैं, हमारे ऊपर आकाश में रहती हैं, विचरण करती हैं अंधकार में, जैसे दुखों में, कष्टों में, प्यास भूख में, अति कष्ट होता है उनको, क्योंकि जिस स्थिति में शरीर छोड़ा है वही स्थिति उनकी बनी रहती है जब तक कोई उनके लिए कुछ करे, पुण्य करे, योग के वाइब्रेशन हम फैलाएं, कोई उन्हें मदद करे, नहीं तो वो आत्माएं दुखों में अनंत काल, जब तक परम धाम में जाने का समय आए, वो भटकती रहेंगी। तो ये दुखों का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। एक डॉक्टर के बच्चे को हो गया तो वो मानता नहीं, अब साइकेट्रिक को दिखा रहे, मन रोग चिकित्सक को दिखा रहे, उसको दवाई खिलाई जा रही है, हाल बिगड़ता जा रहा है, बच्चा सो रहा है सारा दिन। मैंने उनको बहुत समझाया कि अभी सत्य को स्वीकार कर लो, ये भटकती आत्मा का इस पर प्रकोप है, उनसे इसका इलाज करा लो। मुश्किल से उसने माना, अपनी पत्नी के जोड़ लगाने से, तब किसी को दिखाया, तब बच्चे में सुधार हुआ, फिर ठीक हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें दुखों को बहुत बढ़ावा दे रही हैं, जिनका निदान कहीं कहीं तो समझ में भी नहीं आता कि क्या किया जाए, समाधान क्या करे, लोगों की समझ में नहीं आता। एक लड़की, उसकी माँ का फोन आज 2 बार आ गया बेचारी का, मैंने कहा चलो इससे बात कर ही लेता हूँ। उसकी लड़की 9th क्लास में, 1 मास से उस पर कुछ बुरा इफेक्ट, डॉक्टर के पास भी ले गए, मन रोग वालों के पास दवाई दी, कुछ इफेक्ट नहीं, बढ़ता गया, अब रात को सोए नहीं, डल पड़ी है, आज भी कहा डल पड़ी है बिल्कुल, कभी अपने को काटने लगती है, ऐसे फाड़ने लगती है नाखूनों से। तो डॉक्टर तो समझेंगे भाई मन में कोई रोग हो गया, इलाज करा रहे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने उसे भी कहा किसी को दिखा लो भाई, तब इसका कल्याण हो, चाहे छोटी सी लड़की है। तो ये दुख अथाह बढ़ रहा है, देखो सारे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, एकदम अशांति, एक दो जो ज्ञान में उनका योग भी नहीं लग रहा है, चिंताएं सबको, वातावरण, लोग भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, फिर समाज भी तो ऐसा ही है ना, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ, उनका दुख और ज्यादा। और एक प्रैक्टिकल दुखों की बात करते, वैसे ये बात बताते आती तो लज्जा है हमें भी, पर क्योंकि आजकल संसार में बहुत घटित हो रहा है, आज ही से हमको, मैं किसी को फोन करना था, अपना फोन ऑन किया, इतने में नंबर मिला हूं, इतने फोन आ गया, किसी का आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ चलो प्रभु जी की इच्छा होगी इससे बात कर लूं। क्या भाई, मेरी जो बहन है, मैं और मेरी बहन दोनों की एक ही टाउन में शादी हुई, मेरी छोटी बहन को 2 बच्चे, अब जब वो स्टूडेंट थी तब से किसी से प्यार था, अभी वो इस पति को छोड़ के भाग गई है, 2 बच्चों में से 1 को ले गई, 1 को छोड़ गई, बोलो क्या हाल हुआ होगा। कहा मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, लोग बोलते हैं तुम कैसे ज्ञानी हो, ये क्या कर रहे हो, मेरी माँ और बाप तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए हैं, कितनी बड़ी बात हो गई, इन विकारों ने संसार को नरक में बना दिया है। अब देखो 2 बच्चे, नहीं तो बच्चों से भी तो प्यार होता है, 1 को छोड़ गई, मुझे तो हैरानी हुई, मैंने कहा तो कोर्ट का फैसला उसने खुद ही कर दिया, 1 तुम्हारा 1 हमारा, चलो। वासनाएं संसार को नरक तुल्य बनाए हुए हैं और ये संसार को नष्ट कर देंगी, बाबा ने कभी कहा था साकार मुरली में, काम वासना की अग्नि में ये संसार जल के भस्मीभूत हो जाएगा, वो समय पहुंच गया है, जबकि सारी मर्यादाएं भारत की समाप्त हो गई हैं, सब खेल ही पूरा हो गया। तो हम सभी क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? अब ये ऐसी चीज है, इसमें कोई कुछ करे क्या करे, अब वो तो चली गई। अब देखो जिसके पास गई है उसकी भी शादी हुई हुई है, उसको भी बच्चे, दो परिवार टूटे, और निश्चित रूप से ये दुखी होके वापिस आएगी, और तब इसका संसार में कोई नहीं होगा। ये हो रहा है, मेरे पास ये केस आते हैं, लड़कियां खुद बताती है हमने गलती कर दी, वहां भी नहीं हुआ, वापिस आ गए, अब संसार में अकेले हैं। फादर ने कह दिया हमारे शहर में भूल से भी नहीं आ जाना, इज्जत की बात होती है ना माँ बाप की, तुम लड़की मरे मरे इज्जत बड़ी चीज होती है ना। तो देखिए ये दुख कौन पैदा कर रहा है स्वयं के लिए, स्वयं। मनुष्य के संस्कार मनुष्य के लिए आजकल बहुत भारी दुख का कारण बन रहे हैं, मनुष्य के अपने विचार उसके दुखों को बढ़ावा दे रहे हैं। त्याग वैराग सुख शांति से रहना, संबंधों को निभाना, ये छूटता जाता है। तो क्या करना है हमें, फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूं, सभी बाबा के बच्चे इस संसार को 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को सकाश दें। एक आज मुझे जब ये बातें दो तीन फोन आज ऐसे आए शाम को, अभी मैं घूम रहा था, एकांत था, कोई नहीं अभी हमारे वहां भी, तो मुझे बाबा की एक मुरली याद आ रही थी। आप में से जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो करेंगे, 77 की मुरलियों में था, सवेरे उठकर रूहों से रू रिहान करो, और भी एक शब्द था, सवेरे उठकर रूहों की दुनिया में रूहों से रू रिहान करो। किसने बाबा से पूछा कि परम धाम में जाकर, नहीं, ये दुनिया आत्माओं को कुछ अच्छे संकल्प दें हम सभी सवेरे सवेरे, ये एक सुंदर चीज आप सभी शुरू करेंगे सवेरे, योग करके इमर्ज करें संसार की अनंत आत्माएं, सब दिखने लगे, ज्योतियां चमक रही हैं, और उन्हें कुछ संकल्प दें, उनसे कुछ बात करें, जो हम उन्हें कहना चाहते हैं ना वो कहें सच्चे मन से। तो जब हम योगयुक्त होंगे तो अनेक मनुष्यों के अंदर वो सुंदर संस्कार जागृत होने लगेंगे, वो विचार जागृत होने लगेंगे। समझ गई ना माताएं? एक माता जी ज्यादा सो गई, जगा दो जरा, समझ गई ना माताएं? सब न देखे उधर, जग जाओ जग जाओ, बहुत काम की बात हो रही है। सभी समझ गए ना, सवेरे रूहों से रू रिहान करना। देखो ऐसा समय है कि हम मुख से बोलकर किसी को ज्यादा नहीं सिखा सकते, वो हमें सिखाने लगेंगे, होगा ना ऐसा? तुम कौन होते, क्या तुम पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, मैंने बीटेक किया एमटेक किया, दुनिया बदल गई। आजकल के युवक तो ये कहते हैं ना, तुम्हारा जमाना अलग था, अब हमारा जमाना है, हम जमाने की चाल नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो जमाने की चाल है गड्ढे में गिरना, चलो वे गिर जाओ, फिर माँ बाप ही निकालने आएंगे बेचारे दुखी होकर, हमारे बच्चे अभी दुखी हो रहे हैं, चलो इनके लिए हम क्या करें। तो रूहों से रू रिहान, क्लियर है ना? संकल्प देंगे आत्माओं को अच्छे अच्छे, प्रभु मिलन के भी, अपने देव कुल की भी उन्हें स्मृति दिलाएंगे। जैसे देखो बाबा रोज सवेरे मुरली में हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं ना, स्मृति दिलाते हैं, हम भी आत्माओं को कुछ स्मृति दिलाया करें तो बहुत पवित्र हो। शांति तो तुम्हारा श्रृंगार है, गले का हार है, अब तुम्हें प्रभु मिलन का सुख लेना है, वो तुम्हें सब कुछ देने आ गया है, अब उससे सब कुछ प्राप्त करो। जो हम ज्ञान मुख से देते हैं ना, वो सूक्ष्म रूप से रोज एक टाइम निश्चित करके देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक उदाहरण देता हूँ, आपके गांव में मान लो गीता पाठशाला है और आप चाहते हैं बहुत सारे गांव के निवासी क्लास में आने लगे, तो उन सबको इमर्ज करके आत्मा रूप में उनसे ऐसे बात करो, अब सत्य को पहचानो, तुम्हारा परम पिता तुम्हें अधिकार देने आ गया है, वो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, तुम उसके समीप आ जाओ। तो मुख से कहने से वो सुनते नहीं, अहम जागृत होता है, मन काम करेगा, माइंड टू माइंड हमारे वचन उनके अंतर मन में जाएंगे और उनके विचार बदलने लगेंगे। अभी हमें सोचना है हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, मार्ग हमारे सामने है, महात्मा बुद्ध भी आए, उनके मन में इसी खोज ने तो ज्ञान की तलाश शुरू की, यही तो आधार था, दुखों का कारण क्या है, मैं संसार को बताऊं दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे करें। तो एक चीज तो हम सबके लिए कि जीवन में दुख आते भी हैं, हम हल्के होकर रहें, हम हल्के रहते हैं तो हमारे दुख भी हल्के होके समाप्त हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर धारणा है। और परिवार में भी किसी को दुख होता है ना, अभी मनुष्य की आदत है कि अपने दुखों को वो आराम से सहन कर लेता है, पर दूसरों का दुख जो परिवार के हैं भारी लगता है, छोटे बच्चे दुखी हो गए हैं, रोग हो गया है, बहुत फैल गया चिकनगुनिया, आज भी किसी ने मुझे फोन किया, चारों ओर फैलता जाता है नॉर्थ इंडिया में, जयपुर तक भी बहुत फैल गया है, डेंगू चिकनगुनिया बुखार है ये। तो हम कैसा बनाएं अपने को कि छोटे मोटे दुख रोग हमें विचलित न करें, हम शक्तिशाली बनाएं स्वयं को, हम इतने शक्तिशाली हों कि बड़ी से बड़ी बात भी हमें छोटी लगने लगे तो वो छोटी होगी समाप्त हो जाएगी, और हमें छोटी बात भी भारी लगने लगे तो वो हम पर हावी हो जाएगी, हमारे सुखों को छीन ले जाएगी। सुखी रहना अपने हाथ में या दूसरों के, इसको अपने हाथ में ले लेंगे, संकल्प कर दें सभी हमारे सुखों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे बाबा के लिए बहुत कहते हैं ना, आज भी कई कन्याएं आई ज्ञान सरोवर में, यहाँ भी आई होंगी ना, खाना यहाँ था, वहां नाश्ता था, तो मेरे से मिली, दो चार आ गई, कहा बहुत बंधन से आई, मार खा के आई, बाप को कहते थे मार लो जितना मारना, बाबा को नहीं छोड़ेंगे, विजय हो गई, देखो छोटी कन्याओं में ताकत। पहली बार आई पहली बार ही टीचर ट्रेनिंग में आ गई। तो जैसे ये दृढ़ संकल्प रहता है ना, कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ये संकल्प हो जाए, संसार का कोई मनुष्य, कोई घटना, कोई दुर्घटना, परिस्थिति हमारे सुखों को छीन नहीं सकती। कर सकते हैं ऐसा संकल्प, क्योंकि संसार का हाल बुरा होता जाएगा दिनों दिन। मैं कई बार सुनाई है बाबा की ये बात, बाबा ने एक संदेश में बहुत साल पहले कहा था, जब सब पूछते थे कि बाबा विनाश कब होगा, ये प्रश्न तो सदा ही चलता रहा है ना, तो बाबा ने कहा था जब इस संसार का हर मनुष्य बाप को पुकार कर कहेगा हे प्रभु ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट करो, तब विनाश शुरू होगा। अब वो स्थिति तेजी से आती जाएगी कि संसार में इतना दुख और ये इम्प्योरिटी, ये वासनाएं, शराब, इतना ज्यादा इनका चलन बढ़ जाएगा जल्दी ही, देखते देखते ही, तो हर मनुष्य चाहेगा खत्म करो, जैसे बहुत जगह राजस्थान के यहाँ हम पढ़ते रहते हैं, कभी कभी मेरे हाथ में अखबार आता है तो माताएं शराब की दुकान के आगे आके खड़ी हो गई 20-25, खोलने नहीं दिया उसको और कहा इसको बंद करो, सरकार को ज्ञापन भेज दिया इसको बंद करो नहीं तो हम तोड़ देंगे, आग लगा देंगे इस दुकान में। तो अगर मात्र शक्ति शराब के विरुद्ध लग जाए तो भारत से शराब को तलाक लेना पड़े, ये माताओं के हक में है। माताएं तो कम पीती हैं, क्यों कहा मैंने, क्यों कहा, मुझे एक माता मिली अभी एक जगह, छोटी आयु मुश्किल से 30-32 साल होगी, कहा मैं परेशान होके शराब पीने लगी थी भाई जी, मुझे लगा बहुत समय से ज्ञान में होगी, लगती ऐसी थी, कहा अभी ज्ञान में आई हूं 4 मास पहले ही, और सब छूट गया, सब बदल गया। तो बाबा के ज्ञान में तो बहुत शक्ति है ना, हम अपने से बात करें, हमें दुख कहां कहां होता है, जब कोई अपना प्रियजन अपमान करे होगा या नहीं दुख। एक माता बेचारी भावुक रोने लगी, मेरे 2 बच्चे, लड़की 16 साल की, लड़का उससे 2-3 साल कम, दोनों हम दोनों की बहुत इंसल्ट करते हैं, कहा मैं तो सह लेती हूं ज्ञान में हूं, पर जब मैं देखती हूं ये मेरे पति की भी इंसल्ट कर रहे हैं। अब देखो छोटे 16 साल की लड़की, 13 साल का लड़का, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्या करूं इनके लिए। मैंने उसको कहा कि भाई अब संतान तो आपकी है, मैं ये कहूं कलयुग की संतान है आपको बुरा लगेगा, संतान तो आपकी है, जन्म तो इन्हें आपने दिया ना, अब आपने भी अपने माँ बाप की इंसल्ट की होगी, देख लो जरा ध्यान से। हंसने लगी कि नहीं मैंने तो नहीं की। कलयुग का अंतिम समय है ना, क्या याद करेंगे, इसमें वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, या होगा, इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करके अपने को हल्का रखना ही पड़ेगा। ये मेरे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोचेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा। हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब लेकर चल रही है। माताओं के लिए, आपके घर में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन शरीर ही तो छोटा है, आत्मा तो 5000 साल पुरानी है, न जाने क्या क्या भंडार भर के लाई है साथ में, पता थोड़ा है किसी को क्या क्या साथ में ले आई है, हो सकता आपसे बदला लेने आई हो या आपको कुछ देने आई हो, बुरे कर्मों का खाता साथ लाई हो कि जन्म से कष्ट मिलेंगे, आप सबने मिलके चोरियां की हो और सबको इकट्ठा भोगना पड़ रहा हो अभी, ये तो संभव है ना, डाकुओं का भी गैंग होता है ना, तो 15 होते हैं, अब सबने मिलके काम किया है तो मिलके ही सजा खाएंगे ना, तो इस कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए सभी कुछ चीजों को स्वीकार करके चलें, सब देख लें अपने को, सूक्ष्मता से अपने पर दृष्टि डालें, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही है। आप सभी भाई बहने तो बहुत बुद्धिमान हैं, जो मैं बुद्धिमान कह रहा हूं, एक तो बाबा को पहचाना वो तो है ही, पर अपने घरों से समय निकाल कर आप यहाँ सेवा में आते हैं, ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है, नहीं तो माताएं सदा ही अटकी रहती हैं। आजकल बच्चों की शादी होती है, बहू भी नौकरी पे जाती है, लड़का भी, और बच्चों को संभालने का काम दादी को, अब दादी बेचारी उसमें उलझी रह जाती है, क्या करूं, निकल ही नहीं सकते घर से, परंतु आप सब निकल के आते हैं, भाई भी और माताएं भी, ये बहुत समझदारी है और इससे श्रेष्ठ भाग्य बनता है, ये पुण्य समय पर सभी को काम आते हैं, दुखों में भी पुण्य ही मदद करते हैं। पुण्य मनुष्य को बचा लेता है, पाप समय पे धोखा दे देता है। पाप से इकट्ठा किया हुआ धन समय पे डुबो देता है मनुष्य को, और पुण्य की रोटी दाल रोटी भी बड़ी सुखदायी होती है। लेकिन आज संसार में पाप के लिए बहुत, पैसे के लिए बहुत पाप हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इसका फल भी भुगतना पड़ेगा, तो दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सभी मानसिक प्रॉब्लम से बचने के लिए सबको सीख लेना है। क्या करेंगे? कुछ चीजें अपने साथ पक्की लेकर चलें सभी। अब ये खेल पूरा होने वाला है, अब यहाँ दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अब यहाँ सब अंधकार में बुरे से बुरा होने जा रहा है। होगा वही जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू, मस्त रहना है। आदत बनाए सभी, छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा। मस्त रहना सीखे बाबा के साथ, बेफिकर बादशाह, वो काम आएंगे शब्द अभी बहुत। जब कदम पर चिंताओं की अग्नि जलेगी संसार में, ये जो डिप्रेशन है इसका रूप जो शुरू हो रहा है ना, वो ये है। सभी इससे बच के रहेंगे और अपने परिवारों को बचा के रखेंगे, कहीं ना कहीं भय, एंग्जाइटी कहते हैं, आवश्यकता से ज्यादा चिंता, एकदम खा जाने वाली चिंता, नींद ना आना, बहुत सोचना, कोई एक बात हो गई सारा दिन सोचते रहना। कई तो ऐसा सुनाते हैं, एक संकल्प आ गया था सवेरे, वही रिपीट हो रहा है मन में, हम चाहते हैं उसको छोड़ दें, हम क्या कर रहे हैं, वो छूटता ही नहीं है। ये सब डिप्रेशन की ओर बढ़ते कदम है। इसलिए अपने को बहुत अच्छे स्वमान में रखेंगे। स्वमान एक नशा है, ईश्वरीय नशा है। इसमें रहने से छोटी बातों का तो असर ही नहीं होगा। जैसे नशे में रहने वाले लोग कैसे मस्ती से चलते हैं, मैं ही बात रहा हूं बस, ऐसे ईश्वरीय नशे में रहने वाले लोग बेफिकर बादशाह। और हल्के भी रखना है तो अपने को बहुत खुशी में भी रखना है, हालांकि खुशी बहुत कठिन होती जाएगी दिनों दिन, खुशी के लाले पड़ जाएंगे। जैसे सब्जियां नहीं मिलेंगी ना, दूध नहीं मिलेगा, खुशी भी कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमें अपने पास ऐसी कुछ चीजें रखनी हैं जो हमें आंतरिक रूप से सुखी रखें, खुश रखें। कौन सी बातें हैं वो? और प्राप्तियों की, प्राप्तियां, कौन मिला है इस जीवन में, कौन साथी बना है, किसने हाथ पकड़ा है, कौन सिर के ऊपर छत्र छाया है, क्या क्या देखा इस जीवन में, प्राप्तियों की। अपने पास व्यक्तिगत भी सभी कम से कम 10 प्राप्तियों की एक सुंदर लिस्ट लिख कर रखो, 10। मैं तो जब सोचता हूँ इस जीवन में इन आंखों से क्या क्या देखा, तो फिर योग लगाना नहीं पड़ता। इस हॉल में क्या क्या देखा, इस टी हॉल में क्या क्या देखा, बाबा के कमरे में क्या क्या देखा, ओम शांति भवन में क्या क्या देखा, वहां तक देखने का आनंद ही कुछ और था। नीचे तो मेले शुरू हो गए, लेकिन वहां भी बहुत कुछ देखा। बाबा की लहरें, सुंदर लहरें, भगवान बैठ के क्या क्या करता है, क्योंकि मुझे बहुत रुचि होती थी भगवान ने संसार कैसे रचा। अब ये देखने को मिला, कैसे बदलता है वो रूहों को, कैसे पालना करता है उनकी। बहुत लोग तो केवल बाबा के मुख से जो बोला जा रहा उसको ही सुनते हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि से, उसके वाइब्रेशन से, उसके नीचे आने से ही इस संसार में क्या क्या होता होगा सोचो। सूरज आसमान से जमीन पर उतर आए, कितनी लाइट फैल जाएगी। सर्वशक्तिमान नीचे उतर आता है, पवित्रता का सागर नीचे उतर जाता है, तो क्या फैलता होगा संसार में? यही सब वाइब्रेशंस। तो देखा, बहुत कुछ देखा अपनी प्राप्तियों की, 10 की मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सभी एक लिस्ट बने, हर एक की व्यक्तिगत भी होती है ना, बाबा ने कहां कहां मदद की है जीवन में, कहां कहां हमें बचाया होगा, क्या क्या कर दिया है, बहुत कुछ हुआ है हर एक के साथ, उसको लिख लेना चाहिए। अपने ऐसे जो सुंदर अनुभव हैं, जिसको याद करने से बाबा के लिए बहुत प्यार बढ़ जाता है, हमें अपने जीवन की और इस प्रभु मिलन की कीमत का पता चल जाता है, ऐसे अनुभवों को लिख के रखना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें भूल जाती हैं मनुष्य से, और जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति भी कुछ अच्छी बातों को भुला देती है। तो हम ऐसा अभ्यास अभी से शुरू करें कि हम दुखों में दुखी हो ही नहीं। भिन्न भिन्न तरह के दुख आ सकते हैं, दुख कोई पूछ कर नहीं आते, कब क्या हो जाए, व्यक्ति अभी है थोड़ी देर के बाद रहे ही नहीं, किस बीमारी का पता लग जाए शरीर में ये बीमारी आ गई है। तो बाबा जब ये कहा करते थे इसी होल में कि अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे, सोचने की बात है। तो हम सभी उन दुखों के पहाड़ में दुखी न होकर क्या करें? और बोलो, इससे भी अच्छी बात, हम दूसरों के दुख निवारण करने में लग जाएं, तो उस पुण्य से हमारे सुखों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। दुख बहुत बढ़ रहे हैं हमारे, देखते देखते मान लो तेज बाढ़ आ गई, डैम टूट गया है, अब डैम टूटते ही लोग बहने लगे पानी में, मृत्यु आपके सामने दिख रहा है, लोग बहते जा रहे हैं, अब दो स्थिति हो जाएगी, हम भी बहुत परेशान हो जाएं। और दूसरी स्थिति यह है कि हम इन आत्माओं को सकाश दे दें, मृत्यु तो इनकी फट से हो गई होगी, पानी में एक मिनट से ज्यादा तो कोई जीवित रहेगा नहीं, कि अब ये जो आत्माएं हैं ये देह के अटैचमेंट से मुक्त होकर सहज पुनर्जन्म ले लें, नहीं तो आत्माएं भटकती रहेंगी ना। देखो जहां तक उनका शरीर बहता उन्हें दिखाई देगा, वो उसके साथ साथ चलेंगी। हम सभी देने की सेवा में लग जाएं, तो ऐसा बहुत खेल बिगड़ेगा, कहीं आग लग जाएंगी, बॉम्ब्स गिर जाएंगे, मिसाइल्स गिरेंगे, प्रकृति बहुत तूफान करेगी। तो ऐसे में हम अगर देने लगे, हमें अभी से आदत डालनी है, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है तो हम सुरक्षित, और हमारे मस्तक से और नैनों से वाइब्रेशंस फैलने लगे, कि जिधर हमारी दृष्टि जाए उधर वाइब्रेशंस फैलते जाएं। तो रोज सभी यहाँ मधुबन में रहकर विशेष, और आप सभी जब अपने घर जाएं, अपनी छत पर जाकर चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, चार कोने चार दिशाएं, ऐसे तो 10 दिशाएं कहते ना, एक ऊपर एक नीचे, 2 प्लस हो गई, 10 दिशाओं में वाइब्रेशंस फैलाया करें। देखें एक तरफ खड़े हो जाएं ईस्ट की तरफ, योग करें और फिर अभ्यास करें, मस्तक से पवित्र किरणें, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, जहां तक भी इस धरती का कोना लास्ट अंत है वहां तक पहुंच रही हैं। तो यही चीजें हमारी भी बढ़ती जाएंगी, ये सब ध्यान रखेंगे, सुखों के वाइब्रेशंस देंगे, हमारे सुख बढ़ते जाएंगे, पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएंगे, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाएंगे, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, और शांति की सकाश देंगे तो हम शांति के भंडार बनते जाएंगे। तो सभी अपने इन कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए अब इन सेवाओं की गति को बढ़ाएं तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, स्वयं को बहुत हल्का कर दें। और जो समय आने वाला है वो तो हमें देखना पड़ेगा, हमारा रोल कुछ दूसरा हो जाएगा सब ब्राह्मणों का, जिन्होंने अच्छी साधनाएं की हैं वो साक्षात्कार मूर्त बनकर संसार के लिए दुखहर्ता बन जाएंगे, विघ्नहर्ता बन जाएंगे। तो अच्छी साधना करने का समय भी पूर्ण होता जा रहा है, इसलिए स्वयं को ऐसी वैसी बातों से बचाकर, व्यर्थ से बचाकर, साक्षी भाव धारण करते हुए अच्छी साधना करें। और ये सकाश देने की रोज प्रैक्टिस करेंगे, पसंद है ना सकाश देना, ये सहज विधि है, इससे आपको बड़ा मजा आएगा, दसों दिशाओं में वाइब्रेशंस दो, बहुत सुखद फीलिंग हो जाएगी। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।